ओम शांति। आज राजयोग का पहला सत्र है जिसका विषय सेल्फ एम्पावरमेंट इस नाम से दिया गया है जो आपको ब्रोशर मिला है। ये सेल्फ एम्पावरमेंट जो आज का विषय है, जो राजयोग का पहला सत्र है, सबसे पहले प्रश्न उठता है सेल्फ एम्पावरमेंट। ये दो शब्द है, एक है सेल्फ, दूसरा है एम्पावरमेंट। तो प्रश्न उठता है सेल्फ माना क्या और दूसरा एम्पावरमेंट माना क्या, और फिर तीसरा आता है क्यों सेल्फ एम्पावरमेंट करनी है, और फिर चौथा आता है कैसे सेल्फ एम्पावरमेंट करनी है। तो सेल्फ एक शब्द जो हम दिन भर में बार बार यूज करते हैं, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, दाई सेल्फ करते हैं ना। और सिर्फ ये शब्द नहीं इस्तेमाल करते लेकिन ये भी कहते हैं इंसान को जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए, इंसान को जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, सेल्फ एम्पावर्ड होना चाहिए, कहते हैं ऐसा हम। अब मैं आपसे पूछूं, सेल्फ एम्पावरमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? सेल्फ एम्पावरमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? चलो सिंपल मैं पूछती हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? आत्मसम्मान। सेल्फ कॉन्फिडेंस को आत्मविश्वास। ऐसे सेल्फ एम्पावरमेंट को आत्म सशक्तिकरण। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हर बार अंग्रेजी का सेल्फ शब्द जब हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? आत्मा। इसका मतलब जीवन में अगर मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, सेल्फ एम्पावरमेंट बढ़ानी हो, तो आत्मा को समझे बिना वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसके रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम? आत्मा के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। कौन से विश्वास की बात कर रहे हैं? आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं। कौन से सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं हम? आत्म सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैंने आत्मा को नहीं समझा तो सही अर्थों में आत्म सशक्तिकरण कभी नहीं हो सकता, सही अर्थों में सेल्फ रिस्पेक्ट हम कभी डेवलप नहीं कर सकेंगे, सही अर्थों में सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कभी डेवलप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बात उसी की है। तो क्या है सेल्फ? आत्मा शब्द वो ट्रांसलेशन हो गया, तो क्या है आत्मा, क्या है सेल्फ? जीवन में हम आते हैं, मनुष्य इस संसार में आता है और फिर चला जाता है। आता है उसको कहते हैं जन्म, चला जाता है उसको कहते हैं मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ है उसको कहते हैं जीवन, ठीक है। अब जब मनुष्य आता है अर्थात जन्म होता है, तो जब बच्चे का घर में जन्म होता है तो हम अपने इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को खुशखबरी सुनाते हैं कि भाई घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन ये खुशखबरी जन्म की सुनाने से कुछ मास पहले की जो खुशखबरी रहती है वो क्या होती है? बच्चा गर्भ में पल रहा है। और उससे भी कुछ मास पहले की जो खुशखबरी होती है, जो सभी को नहीं दी जाती है, इन मीन तीन तक वो सीमित रहती है, और वो खुशखबरी होती है गर्भ ठहरा है। उस समय बच्चे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि उस समय बच्चा है ही नहीं, बल्कि क्या है, स्त्री के गर्भ में माता और पिता के अणु मिले हैं और एक मांस का पिंड उस गर्भ में ठहर चुका है और उसको कह रहा गर्भ ठहरा है। और वही मांस का पिंड समय पाकर उसमें विभाजन 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 बहु विभाजन होता रहता है और उसके परिणाम स्वरूप कुछ समय के उपरांत वो जो एक छोटा सा मांस पिंड था पहले, वो मानव शिशु आकृति में बनकर तैयार हो जाता है। और जब मानव शिशु आकृति में वो तैयार हो जाता है, तब उसमें एक शक्ति प्रवेश करती है। जिस शक्ति के प्रवेश करने के बाद मां अपने गर्भ में उस शिशु की हलचल को अनुभव करना आरंभ कर देती है। बैठी है कुछ माताएं? है कोई माता यहां पे? है अनुभव ये? उसके पहले तक कोई हलचल उसे अनुभव नहीं होता है, लेकिन जब चैतन्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश करती है और वहां पर शिशु हलचल आरंभ कर देता है और कुछ समय और उसी गर्भ में रहता है, उसका विकास होता है और उसके बाद वो बच्चे के रूप में इस दुनिया में जन्म लेता है। तो एक इंसान का जो जन्म का प्रसंग है वो ये सिखाता है कि मनुष्य माना सिर्फ शरीर नहीं, मनुष्य माना शरीर और उस शरीर को चलाने के लिए, उस शरीर में हलचल पैदा करने के लिए एक चैतन्य शक्ति, ये दोनों जब साथ में है तो जीवन है। इसीलिए कई बार जब बच्चा जो कहा कि हलचल आरंभ होती है और कभी अचानक से मां हलचल को अनुभव करना बंद करती है तो डर जाती है, कहीं हम आगे नहीं बोलेंगे, समझ गए आप कि कहीं, कई बार बच्चा कहीं वाले इसमें नहीं था, मां उसका सब कुछ अनुभव कर रही थी, लेकिन जन्म लेने के बाद अब उसकी हलचल ही नहीं है। तब कहते हैं बच्चा पैदा तो हुआ था, जीवंत था, लेकिन पैदा होने के बाद चल बसा। तो किस आधार से कह रहे चल बसा? उसकी हलचल सारी बंद हुई पड़ी है। और हलचल किसने प्रदान की थी उसमें, जब मां के गर्भ में वो पल रहा था बच्चा? एक चैतन्य शक्ति प्रवेश होने के बाद उसमें हलचल हुई थी। और अब बाहर आने के बाद अगर किसी कारण से वो चैतन्य शक्ति निकल गई है तो हलचल बंद है, तो कहते हैं मर गया है शिशु। लेकिन अगर है तो शिशु जिंदा है, जीवन चल रहा है। तो इंसान के जन्म का प्रसंग ये बताता है कि मनुष्य जीवन अपने आप में दो सत्ताओं का कॉम्बिनेशन है, एक ये शरीर और दूसरा शरीर को चलाने वाली शक्ति। ऐसे ही अगर मृत्यु के प्रसंग को देखें, तो जब किसी की मृत्यु होती है तो पुनः हम अपने इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को वो दुखद समाचार शेयर करते हैं और ये बता देते हैं कि फला टाइम पर, फला स्थान पर अंतिम संस्कार होना है और उस मृतक शरीर का हम जाकर अंतिम संस्कार करके आते हैं। और वहां पर हमारी जिम्मेवारी पूरी नहीं हो गई, हम फिर और एक अनाउंसमेंट करते हैं। कौन सी अनाउंसमेंट करते हैं? वो व्यक्ति जो चल बसा है उसकी आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन फला समय पर, फला स्थान पर है। एक व्यक्ति के चल बसने के बाद भी दो जिम्मेवारियां अदा की जा रही हैं, एक मृतक शरीर के प्रति और दूसरी जिम्मेवारी उस शरीर में जो आत्मा निवास करती थी, जो अब चल बसी कहीं और, उसकी आगे की यात्रा अच्छी रहे, सुखद रहे, शांतिपूर्वक रहे, उसके लिए शांति का योगदान। तो मनुष्य जीवन में जो कहा आता है उसको कहते हैं जन्म, जाता है उसको कहते हैं मृत्यु, और इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन जी रहा है उसको कहते हैं मनुष्य जीवन। अब सवाल उठता है, जन्म का प्रसंग भी हमें सिखा देता है कि मनुष्य माना दो सत्ताओं का कॉम्बिनेशन, मृत्यु का प्रसंग भी हमें सिखा देता है कि मनुष्य माना दो सत्ताओं का कॉम्बिनेशन, लेकिन विडंबना इस बात की है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन जी रहा है मनुष्य, वहां पर वो इन बातों से बेखबर है या नहीं? सिर्फ और सिर्फ हम इसको ही सब कुछ समझ कर बैठे हैं और इसलिए हम एम्पावर्ड नहीं हो सकते हैं। तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक पलड़ा इधर, एक पलड़ा इधर। जब दोनों खाली हैं, तो दोनों समान सतह पर हैं। लेकिन एक में डालना आरंभ किया और दूसरे में नहीं डाला, तो समान रहेगी सतह दोनों की, एक ऊपर एक नीचे। अब कितना आपने डाला उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि ऊपर और नीचे की गैप कितनी आई है, ठीक है ये बात? अब अगर जिसमें मैंने कुछ डाला है इसमें अब और डाल रही हूं और जिसमें नहीं डाला उसमें अभी भी कुछ ध्यान नहीं दे रही हूं, माना एक खाली रखा गया है और दूसरे में भरते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक भरे जा रहे, भरे जा रहे, तो ये जो गैप थी, जो ऊंचा नीचा था, ये गैप क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जितनी ये गैप बढ़ेगी उतनी उस तराजू के तारों में टेंशन आएगी, आएगी ना? टेंशन बढ़ते बढ़ते स्ट्रेस में परिवर्तन हो जाएगा वो, और स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते वो तारों में डिप्रेशन आएगा, अर्थात अब वो बोझ को सहन नहीं कर पाए और तराजू धड़ाम से गिर पड़ा। होगा ऐसे? होगा। स्टेज का एसी अगर बंद कर सकते हो तो बंद कर देना प्लीज। तो धड़ाम से तराजू गिर जाएगा और जो वस्तु उस तराजू के एक पलड़े में हमने डाली थी वो सारी भी नीचे गिर जाएगी, बिखर जाएगी और जहां वो धड़ाम से गिरा है वहां कुछ टूट फूट होगी, वो भी उसमें मिक्सचरिटी हो जाएगी और अब जो चीज मैं उसमें भर रहा था अब गिर कर बिखर कर उसमें और कुछ मिल गया, मेरे काम का वो रह नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ क्या गलती हुई मेरे यहां पे, क्या गलती की मैंने यहां पे, तराजू के दूसरे पलड़े में कुछ डाला ही नहीं और इस कारण से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। उस इम्बैलेंस ने टेंशन क्रिएट किया, उस टेंशन धीरे धीरे बढ़ता गया तो स्ट्रेस में बदल गया, वो स्ट्रेस बढ़ता गया तो धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल गया, धड़ाम से आके गिर गया और कुछ भी हाथ में नहीं लगा, लेने के देने पड़ गए। ठीक है ये बात, ठीक है ये बात। बस जीवन में भी यही हो रहा है, जीवन के भी दो पक्ष हैं, एक शरीर और दूसरा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति। इसी चैतन्य शक्ति को सेल्फ कहा, आत्मा कहा, कहा ना सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट, हिंदी में ट्रांसलेट किया, आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ एम्पावरमेंट, स्व सशक्तिकरण या आत्म सशक्तिकरण। तो ये शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है वही सेल्फ है, वही आत्मा है। अब मुझे अपने से सवाल पूछना है कि जब जीवन के ये दो पक्ष हैं, क्या मेरा ध्यान इन दोनों की तरफ है या सिर्फ एक की तरफ है? क्या कहेंगे उत्तर में, क्या कहेंगे उत्तर में? एक की तरफ है, सिर्फ और सिर्फ शरीर की तरफ है। शरीर को संवारना है, शरीर के संबंधों को निभाना है, शरीर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कमाना है, कार्य करना है, संबंधों को निभाने के लिए अपनी जिम्मेवारियां अदा करना है। सारा सारा जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें केंद्र में कौन है? सिर्फ और सिर्फ शरीर है, जबकि जीवन शरीर और आत्मा इन दोनों से मिलकर बना है। तो हम यहां पे जीवन में भी यही गलती कर रहे हैं, एक पलड़े में भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं और दूसरे पलड़े में कुछ भी नहीं। इसकी एम्पावरमेंट खूब हो रही है, खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना, रेस्ट देना, एक्सरसाइज करना, खुली हवा में जाना, इसकी एम्पावरमेंट खूब हो रही है। लेकिन इसके भीतर जो शक्ति है जिसके कारण ये जिंदा है, जिसके चले जाते ही इसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? डेड बॉडी, मृतक शरीर। उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं तो एम्पावरमेंट की तो बात बहुत दूर है। और इसलिए कहा राजयोग का पहला सत्र सेल्फ एम्पावरमेंट, कि उस सेल्फ को हम पहले समझें और समझकर फिर एम्पावरमेंट करें तो तराजू के पलड़े में क्या आएगा? बैलेंस आएगा। और जहां बैलेंस है वहां ब्लेसिंग है, जहां बैलेंस है वहां ब्लेस है। सारे जीवन हम जो कुछ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? लाइफ को ब्लिसफुल बनाने के लिए ही तो कर रहे हैं। और कोई मकसद है जीवन का? एक ही मकसद है कि मेरी लाइफ कैसी हो, ब्लेसिंग से भरी हो, मेरी लाइफ कैसी हो, ब्लिस से भरी हो, आनंद भरे जीवन में आनंद हो और जीवन में सबकी दुआएं और आशीर्वाद हो। यही है ना सारे जीवन में जो कुछ हम कर रहे हैं, और कोई मकसद है? इतना ही मकसद है। और ये मकसद तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तराजू के दोनों पलड़ों की ओर हम ध्यान नहीं देंगे। तो एक की तरफ तो हम बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन दूसरा पलड़ा जो अनदेखा रह गया अध्यात्म, उसी ओर ध्यान खिंचवाता है। क्योंकि कहा जीवन माना दो पक्ष, एक भौतिक पक्ष, शरीर माना भौतिक पक्ष, और आत्मा माना अध्यात्म पक्ष। ये दोनों का मिलन जीवन अच्छा चलता है, जीवन ब्लिसफुल बनता है। तो इसी को सेल्फ कहा आत्मा को। और सेल्फ कैसे स्पेल करेंगे आप इंग्लिश में? एस ई एल एफ, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, एक आध्यात्मिक ऊर्जा किस रूप में? ज्योति के रूप में। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है हम क्या कहते हैं? जीवन ज्योति चली गई। इतना ही नहीं, कई महापुरुषों का जो जन्म हुआ है तो उनकी माताओं को उस गर्भवती रूप में जब दिखाते हैं तो दिखाते हैं कि एक प्रकाश आया और गर्भ में एंटर कर गया, ऐसे ही दिखाते हैं। वो क्या बता रहे हैं? आत्मा ने प्रवेश किया, वो आत्मा ज्योति स्वरूप है। अब एक ऊर्जा है, आत्मा क्या है? एक ऊर्जा है। अब ऊर्जा में क्या होता है? गुणधर्म होता है, जैसे पानी है, सूर्य है। सूर्य भी अपने आप में क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है उसका गुणधर्म? ऊर्जा का गुणधर्म क्या है बोलो? सूर्य का प्रकाश देना और उष्मा देना, गर्मी देना। अगर सूर्य प्रकाश न दे, उष्मा न दे, तो उसको सूर्य कहेंगे ही नहीं, है ना? क्योंकि सूर्य माना ही प्रकाश और उष्मा का पिंड। ये हो सकता है कि बादल छा जाए और उस कारण से उसका प्रकाश और उसकी उष्मा मेरे तक नहीं पहुंचे। बादल बाधा बीच में खड़ी हो सकती है, लेकिन सूर्य के पास तब भी उष्मा और प्रकाश होगा ही होगा। जिसको हम सूर्यास्त कहते हैं, उस सूर्यास्त के समय भी सूर्य के पास अपना प्रकाश और उष्मा होता ही होता है। सूर्य की उष्मा और प्रकाश उससे कभी अलग नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि हमें महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि उसके और मेरे बीच में कुछ बीच में बाधा खड़ी हो गई है, कोई दीवार आ गई है, तो वो मैं अनुभव नहीं कर रही, वो अलग बात है। लेकिन उससे कभी भी प्रकाश और उष्मा अलग नहीं हो सकते। उसको ही कहते हैं उसका निजी गुणधर्म। पानी, पानी का गुणधर्म क्या है? पानी का गुणधर्म क्या है? शीतलता। क्या मतलब है शीतलता उसका गुणधर्म है? अगर ये ग्लास है,
इसमें पानी है,
इसमें पानी है, और ये गर्म पानी है। कैसा पानी है? मैं इस गर्म पानी को अपने हाथ में, ये गर्म पानी का ग्लास होल्ड किए हूं, और मैं कहती हूं ये पानी का गुणधर्म शीतलता है। मैं सही कह रही हूं या गलत कह रही हूं? पानी गर्म है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पानी गर्म है, मैं क्या कह रही हूं? पानी का गुणधर्म शीतलता है। तो ये दो बातें समझ में आ रही है कि गुणधर्म होना और गर्म होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। गुणधर्म का मतलब क्या हुआ कि पानी का गुणधर्म शीतलता है इसका मतलब ये है कि पानी स्वभाव से शीतल है, लेकिन अगर इसको गैस के ऊपर रख दिया तो वो गर्मी को, ऊष्मा को अक्वायर कर लेगा, उस खींच लेगा उस गर्मी को अपने भीतर, ताप को अपने भीतर, और चूंकि अपने भीतर उस ताप को, उस गर्मी को और ऊष्मा को उसने सोख लिया है, अभी वो गर्म महसूस हो रहा है, अभी उसकी शीतलता का एहसास मुझे नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस पानी को गैस पर से उतार देती हूं और उसने जो गर्मी सोखी है उस गर्मी को वापस निकल जाने के लिए उसको टाइम देती हूं, तो पानी वापस आकर कहां खड़ा हो जाएगा? अपनी शीतलता पर आ जाएगा। तो जब गुणधर्म शब्द कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज जो गुणधर्म में कही जा रही है, जैसे कहा जा रहा है कि पानी का गुणधर्म शीतलता है, शीतलता को आप कभी भी सदा सदा के लिए नष्ट नहीं कर सकते। उसमें आपने गर्मी भर दी तो उसकी शीतलता अब मुझे अनुभव होना बंद हो गई, पर उसकी शीतलता उसमें से खत्म नहीं हुई है। समझ में आ रही बात? उसके पास है, लेकिन इस समय टेम्परेचर को, गर्मी को उसने सोख लिया है, तो जो सोखा है वो दिखाई पड़ रहा है, वो अनुभव हो रहा है, लेकिन सोखी हुई चीज को निकल जाने का अगर अवसर दे दिया जाएगा तो वापस वो अपने शीतल स्वभाव पर आकर खड़ा हो जाएगा। ठीक ऐसे ही सेल्फ, आत्मा, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, जिसको सरल शब्दों में कहें ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्योति स्वरूप चैतन्य शक्ति, इसके भी अपने गुणधर्म है। ऊर्जा का गुणधर्म होगा ना भाई, ये भी एक ऊर्जा है, रूहानी ऊर्जा है, आध्यात्मिक ऊर्जा, पर है तो ऊर्जा ना, और हर ऊर्जा का कोई ना कोई स्वभाव होगा ही। इस ऊर्जा का भी अपना गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है? तो क्या चाह रहे हैं हम जीवन में? सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, शुद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, आनंद चाहिए। सारी उठा पटक जिंदगी की अंततः यही प्राप्त करने के लिए है। परंतु जितनी भी उठा पटक हम कर रहे हैं ये पाने के लिए, अनुभव कहता है ये गुण जो है मेरे से और दूर जा रहे हैं। है ये बात सच्ची? सोचा था शायद घर में हर प्रकार की सुविधाएं नहीं है ना, इसलिए कलह कलेश मची रहती है, तो जरा ज्यादा कमाऊंगा पैसा और घर को सभी साधनों से पूरा करूंगा तो घर में शांति रहेगी, प्रेम रहेगा। और अनुभव क्या कहता है? बहन जी, सोचा जरूर था ऐसे, और खूब उसके लिए कमाया, खूब साधन भी जुटाए, और सचमुच मेरा घर अभी साधनों से भरपूर भी हो गया है, लेकिन पहले वाला प्रेम, पहले वाली शांति वो अब तक नहीं आई, बल्कि और उसका लेवल क्या हो गया है? कम हो गया है। सभी का अनुभव कि जितनी उठापटक इनके लिए की और उसके नाम पर मैंने बाह्य जगत में ध्यान दिया कि शायद ये करने से, शायद वो करने से, वो सब तो आ गया, पर जिस मकसद से किया था वो मेरे जीवन से दूर होता जा रहा है। इससे साबित है कि ये प्रेम, ये शांति, ये खुशी इन भौतिक उपलब्धियों में नहीं है, ये तो मेरा निजी गुणधर्म है, ये तो मेरा निजी गुणधर्म है और इसको अनुभव करने के लिए मुझे निजता में, अपने आप में, सेल्फ में, आत्मा में झांकना पड़ेगा, क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वहीं एनर्जी का फ्लो होना आरंभ होता है। तो जरूरत है स्वयं पर झांकने की, और जब स्वयं पर झांकने की बात कही अर्थात आत्मा पर झांकने की अर्थात सेल्फ पर झांकने की, और इसका मतलब आज दिन तक तो मैं सेल्फ, आत्मा, स्वयं के नाम पर मिरर के सामने जब खड़ी होती हूं तो ये जो छवि वहां बनती है उसको मैं कहती हूं ये मैं हूं, कहते हैं ना मैं, उसी को कहते हैं ना मैं जो मिरर के सामने छवि तैयार होती है। लेकिन अब ये रॉन्ग इक्वेशन है मेरी कि ये मैं हूं, राइट इक्वेशन है कि मैं सेल्फ हूं, मैं एनर्जी हूं, स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। तो अपने आप को जब मैं दर्पण में देखूं अब, तो इसको मैं नहीं कहूंगी, ये तो शरीर है, लेकिन इस शरीर के भीतर जो चैतन्य शक्ति, जो ज्योति स्वरूप ऊर्जा है, जो आत्मा है, जो सेल्फ है, वो मैं, उसके होने से मैं इसको मेरा, हम इसके लिए दो शब्द इस्तेमाल करते हैं शरीर के लिए, मैं भी और मेरा भी। दर्पण के सामने इसको मैं बोला और समझो मैंने एप्पल उठाया, काटा, गलती से उंगली भी कट गई, तो मैं उंगली कटी या मेरी उंगली कटी मैं चिल्लाऊंगी, मेरी उंगली कटी बोलूंगी, मैं उंगली कटी नहीं बोलूंगी, जबकि दर्पण के सामने उसको मैंने क्या बोला था। तो मैं इसके लिए मैं भी इस्तेमाल कर रही हूं, मैं इसके लिए मेरा भी इस्तेमाल कर रही हूं। ये रुमाल है, ये मैं रुमाल या मेरी रुमाल, मेरी रुमाल, क्यों? रुमाल अलग चीज है और मैं उसकी मालिक अलग हूं। ऐसे ही शरीर अलग चीज है और शरीर के मालिक आत्मा अलग है, और जो मालिक है वो मैं है, समझ में आ रही? और मालकिन के पास जो है, मालक के पास जो है वो मेरा है, ऐसा ही होता है ना। तो शरीर मेरा है और मैं आत्मा हूं, मैं सेल्फ हूं, और इस सेल्फ जो ज्योति स्वरूप है उस पर झांकना आरंभ करें, और उस पर झांकना आरंभ करें उसी को कहते हैं आत्मदर्शन करना आरंभ करें। मंदिर में जाते हैं ना तो तिलक पहले लगाते हैं, पहले तो बाहर जूता चप्पल छोड़ते हैं, फिर अंदर प्रवेश करते हैं, टीका खुद को लगेगा, टीका उस मूरत को लगेगा, उसके बाद हमारी आरती, पूजा, प्रार्थना होगी, ऐसा ही होता है। तो ये जूते चप्पल बाहर उतारने का मतलब क्या था कि अब तक तो मैं इसको मैं समझती थी, परंतु ये मैं नहीं है, ये तो देह है चमड़ी का बना हुआ, इस देह को, इस चमड़ी को, इसकी स्मृति को दूर रखो। अभी अब कौन सी स्मृति में आ जाओ, क्या किया अंदर जाके, तिलक लगाया, का इस स्मृति में आ जाओ, आत्मदर्शन करो। तो ये जो चैतन्य शक्ति आत्मा है इस शरीर के भीतर कहां निवास है इसका, जहां तिलक करते हैं, सबसे पवित्र स्थान माना गया है पूरे शरीर में इसको, क्योंकि पवित्र आत्मा का यहां निवास है, और इसका दर्शन करो। जब इसका दर्शन करोगे ये एनर्जी है, दर्शन करोगे माना ध्यान को उस तरफ केंद्रित करोगे तो उसमें से जो ऊर्जा निकल रही है वो अनुभव में आएगी, वो आपके अनुभव में आएगी। और जब वो अनुभव में आएगी तो आप अपने आप को क्या महसूस करेंगे? एम्पावर्ड महसूस करेंगे। तो सेल्फ एम्पावरमेंट, अपना दर्शन करो, उसका चिंतन करो कि क्या क्या उसके गुण हैं जिसको हम बाह्य जगत में ढूंढ रहे थे, वो तो उसके खुद के गुण है, उसका चिंतन करो। मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप, और मेरे गुणधर्म, मैं शांत स्वरूप हूं। जब हम चिंतन आरंभ करेंगे, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, उसमें कई सारे बटन होते हैं, कनेक्शन अलग अलग लाइट का, जैसे अभी हमने कहा स्टेज का प्लीज ऐसी बंद कीजिए, तो पर्टिकुलर अलग उसका स्विच होगा ना। अब जो वाला बटन आप ऑन करोगे, ऊर्जा उस तरफ फ्लो होगी, उसी तरफ फ्लो होगी और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं कहती हूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो शांति वाली फाइल ओपन होगी, वाइब्रेट होगी ऊर्जा उस रूप में, और मैं शांति का अनुभव करूंगी। मैं कहती हूं मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, तो शक्ति वाली फाइल ओपन होगी, वाइब्रेट होगी एनर्जी उस फॉर्म में, और मैं शक्ति को अनुभव करूंगी। तो ये है सेल्फ। तो ये सेल्फ इस शरीर में यहां बैठी है, भ्रुकुटी वाले स्थान पर, और यहां बैठकर वो कर क्या रही है? यहां बैठकर इस शरीर के मदद से कर्म कर रही है ना, आत्मा कर्म कर रही है ना, कर्म कर रहे हैं हम। क्या कर्म कर रहे हैं? बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब कर्म है हमारे। और यही सारे कर्म करना बंद हो जाएगा जब ये आत्मा यहां से निकल जाएगी। तो जैसे ये शरीर मिला है इस आत्मा को, जिसमें इंद्रियां हैं, आंख देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, मुख बोलने के लिए है, नाक श्वास लेने के लिए है, गंध लेने के लिए है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करने के लिए, ऐसे ही भीतर में आत्मा के पास और भी फैकल्टीज है। ये तो बाह्य दिखाई पड़ती है, इसलिए इसका ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहलू अनदेखा रह गया है उसे हमें समझना है। तो भीतर में मन है, बुद्धि है, संस्कार है, ये सारे उपकरण मिले हुए आत्मा को कि इन उपकरणों का इस्तेमाल करके जीवन को चलाओ। तो मन मिला है सोचने के लिए, बुद्धि मिली है निर्णय करने के लिए। तो मन सोचेगा और सोच के नाम पर मन के सामने कोई बात आई, समझो एक बात आई कि मुझे आज रात को दिल्ली के लिए रवाना होना है, ठीक है? अच्छा, कुछ कारण बना है मुझे जाना है। तो प्रश्न आएगा किससे जाऊं? ट्रेन से, फ्लाइट से? ट्रेन से जाऊं, एसी में जाऊं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, फ्लाइट, फ्लाइट में कौन सी फ्लाइट से जाऊं? इकोनॉमिक वाली सीट लूं, बिजनेस वाली सीट लूं? समझ में आ रही बात? जाना है दिल्ली, लेकिन अभी कितने सारे ऑप्शन क्रिएट हो गए? बहुत सारे। तो कोई भी जीवन में एक बात आएगी, मन उसके लिए ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने खड़ा कर देगा। लेकिन मुझे जाना है तो कुछ ना कुछ एक ही तो फाइनल करना होगा। अब जो डिसीजन लेना है कि चूज करना है, इतने सारे ऑप्शन में से मैं कौन सा वाला चूज करूं, तो ये जब चूज करते हैं तो चूज करने वाली जो शक्ति है, जो डिसाइड करने वाली शक्ति है, उसको कहते हैं बुद्धि। तो एक है मन सोचने के लिए, सोच के नाम पर बहुत सारे ऑप्शन भी खड़े हो जाएंगे, फिर उसमें से चूज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए बुद्धि रूपी उपकरण भी आत्मा को मिला हुआ है। और फिर जब कोई भी कार्य, जब पहले सोचा, निर्णय किया, फिर कर्म में आ गए, अगर कोई भी कार्य हम रिपीटेडली करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा संस्कार बन जाएगा। मैं हर बार दिल्ली जाने के लिए मैंने राजधानी चूज किया था और मुझे बड़ा सुकून मिला, रात को जाओ सुबह पूरी रात बस हो जाओ, सुबह अपने गंतव्य पे पहुंच जाओ। फिर अगली बार भी उसमें गए, अगली बार भी, तो हम दूसरों को भी क्या सजेस्ट करेंगे, अरे राजधानी अच्छी है, रात को चले जाओ सो जाओ और सुबह काम पे लग जाओ। तो अब जब मैंने बार बार राजधानी राजधानी चली गई हर बार, तो अगली बार जब फिर बात आएंगी दिल्ली जाना है, तो अब इतने सारे ऑप्शन खड़े ही नहीं होने वाले हैं, सीधा क्या आएगा आंसर अंदर से, राजधानी। तो कोई भी कार्य जब बार बार रिपीट करते हैं वो ऑटोमेटिक मोड में सेट हो जाता है। हर बार कितना सोचेंगे, हर बार कितना निर्णय लेंगे, आप देखो किचन में रोटी बनाते हैं, पहली बार सीखा था, माँ ने सिखाया था आटा कैसे गूंथना है, रोटी कैसे बेलनी है, समय लगा था। हर दिन अगर पूरी जिंदगी भर मुझे रोटी सीखनी ही पड़े और बेलने के लिए भी सीखना ही पड़े, वो काम कर सकूंगी मैं? नहीं। एक बार सीखा, दो बार सीखा, कि कुछ समय के बाद उसको ऑटोमेटिक मोड में सेट हो जाना पड़ता है ना, और फिर हम ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक मोड में सेट हो जाता है उसको कहते हैं संस्कार। कि कोई भी कार्य जब रिपीटेडली किया, अब वो ऑटोमेटिक मोड में सेट हो गया है, संस्कार। तो कई ऐसे कार्य है जो हम संस्कार वश कर रहे होते हैं, नहीं इसीलिए तो रोटी भी बेल रहे और दूसरा भी काम चल रहा है, नहीं तो एट ए टाइम एक ही काम कर सकते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना हम तो, अरे भाई एक टाइम पे मैं कितना काम करूंगा, अब सोचो तो सही। लेकिन कुछ काम जो ऑटोमेटिक मोड में चले गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो रहे, उस समय मैं दूसरा काम भी कर सकती हूँ, कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। जब शुरू में ड्राइविंग सीखा था तो पूरा फोकस उस पे था, ना किसी से बोल रहे थे, ना किसी को देख रहे थे, लेकिन ड्राइविंग में हाथ बैठ गया, ड्राइविंग भी कर रहे, बात भी कर रहे, फोन भी चल रहा है, गाने भी सुन रहे हैं, पीछे जो बैठे उनके साथ बातें हो रही, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्राइविंग वाला जो कार्य है वो ऑटोमेटिक मोड में सेट हो गया, वहां मुझे बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मन बुद्धि संस्कार और ये देह, ये आत्मा के उपकरण है जिसको इस्तेमाल करके कर्म कर रही है। अब ये कर्म करते करते हमारा जो गुणधर्म है, शांति का, प्रेम का, खुशी का, हम उसको फ्लो होने नहीं दे रहे हैं, हम इसके बदले दूसरा कुछ फ्लो करा रहे हैं, पता है क्या, चिड़चिड़ होकर काम कर रहे हैं, चिंतित हैं और काम कर रहे हैं, भीतर में भयभीत हैं और काम कर रहे हैं, भीतर में किसी के प्रति जलन का भाव चल रहा है और काम कर रहे हैं, तो वो फ्लो हो रहा है ना हमारे से बाहर, कभी गुस्सा, कभी नफरत, कभी चिंता, कभी ईर्ष्या, कभी भय, कभी टेंशन, कभी डिप्रेशन, सब तो झलकता है बाहर, झलकता है कि नहीं झलकता है, और ये क्यों ऐसे झलक रहा है? मेरा गुणधर्म तो प्रेम है, मेरा गुणधर्म तो शांति है, मेरा गुणधर्म तो खुशी है, वो क्यों नहीं आ रहा है बाहर? सूर्य का गुणधर्म है प्रकाश, सूर्य का गुणधर्म है उष्मा, वो क्यों नहीं आ रहा है? वो अगर मुझे नहीं अनुभव होता है तो कारण क्या होता है? या तो बादल आ गए हैं बीच में, या तो सूर्य दूसरी ओर चला गया है, यही होता है ना। ऐसे ही मेरा गुणधर्म मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है, कारण क्या है? बादल आ गए हैं, बादल आ गए हैं। एक बल्ब देखा है आपने, बल्ब में अंदर में फिलामेंट होता है, फिलामेंट जलता है ना, और उसके चारों तरफ जो कांच की कवरिंग है उसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, वो फिलामेंट से निकला हुआ प्रकाश उसको क्या कर रहा होता है? प्रकाशित कर रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब वो जो बल्ब है जिसको हमने जलाया तो फिलामेंट प्रकाशित हुआ, और उसके चारों ओर चूंकि कांच की कवरिंग है तो वो भी कांच की कवरिंग भी क्या हो गई? उस प्रकाश से प्रकाशित हो गई, और चूंकि कांच ट्रांसपेरेंट है तो प्रकाश उस ट्रांसपेरेंट कांच से निकलकर बाहर आ रहा है। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, डस्टिंग आदि कुछ किया ही नहीं, तो उसके ऊपर धूल जमेगी या नहीं जमेगी? कांच के ऊपर धूल जमते 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 मोटी लेयर चढ़ जाएगी या नहीं चढ़ जाएगी? फिर एक दिन आएगा जो उसकी कैपेसिटी है, उसकी उस बल्ब की जो कैपेसिटी है जितना वोल्ट का है, उतना प्रकाश नहीं महसूस होगा, होगा या नहीं होगा? हालांकि चालू है वो, एक होता है फ्यूज उड़ जाना, वो अलग चीज है, एक है जल भी रहा है लेकिन प्रकाश नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि पूरी बाहर में धूल की परत चढ़ी हुई है, और किचन में अगर लगा हुआ है तो वो छौंक, वो सीटियां, उसमें सब चिकनाहट, अच्छी मोटी खासी थिक लेयर जम गई है, और इसलिए वो अंदर का प्रकाश बाहर नहीं आ रहा है। तो आज अगर मेरा गुणधर्म प्रेम है, खुशी है, आनंद है, होते हुए भी ये बाहर नहीं आ रहा है, उसका कारण ये बाहर में उसके मोटी मोटी थिक लेयर चढ़ गई है। मन में सदा ही भय बना हुआ है, मन में सदा ही ईर्ष्या चल रही है, घृणा चल रही है, डर है, टेंशन है, नफरत है, उसकी मोटी मोटी थिक थिक लेयर्स कहो, उसको कोहरा कहो, उसको बादल कहो, उसमें से सूर्य का प्रकाश बाहर आए तो कैसे आए? बादल को छटना पड़ेगा, कोहरे को छट जाना पड़ेगा, ये थिक लेयर को ये डस्टिंग करके निकालना पड़ेगा, तब जाकर वो प्रकाश बाहर आएगा। और उसके डस्टिंग का यही उपाय है, उसके भीतर झांकना आरंभ करो, आत्मदर्शन करो। हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस मन के फ्लो में बहे जा रहे, बहे जा रहे, बहे जा रहे। हम ये महसूस ही नहीं कर पा रहे कि मैं इससे अलग हूं, ये शरीर अलग है, ये आंख, इसके एक एक उपकरण जो अलग है, ये मन भी अलग है, ये बुद्धि भी अलग है, ये तो सब मुझे उपकरण मिले, मैं इनसे अलग, चैतन्य शक्ति आत्मा ज्योति स्वरूप। जैसे बल्ब का कवरिंग वो अलग है, लेकिन फिलामेंट जो जल रहा है वो अलग है, वो मैं आत्मा, वो कॉन्शियसनेस, वो सेल्फ। उस तरफ ध्यान को सिर्फ लेके जाइए, तो अपने भीतर यहां पे केंद्रित करना है स्वयं को। किससे कैसे केंद्रित करेंगे? कहेंगे दिखती तो है नहीं, वो दिखेगी क्यों आपको? ये तो आंख भौतिक ऊर्जा का हिस्सा है ना, चर्म चक्षु है, जबकि वो ऊर्जा क्या है? रूहानियत वाली ऊर्जा है, अध्यात्म वाली ऊर्जा है। वो इन चर्म चक्षु से नहीं दिखेगी, वो अनुभव से दिखती है, वो समझ के नेत्र से दिखती है। यहां पे हम बैठे हैं, यहां पे सूरज दिख सकता है आपको? अभी फिजिकल आंख से नहीं दिख सकता, लेकिन अनुभव की आंख से दिखेगा या नहीं दिखेगा, बोलो दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो अनुभव की आंख से कैसे देखना होता है, समझ में है ना, समझ है ना। एक बार आप समझ मिल चुकी सेल्फ क्या है, SELF स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, जहां तिलक करते उस स्थान पे है, वो ज्योति स्वरूप है। बस ये समझ मिलने के बाद अब अनुभव के नेत्र से मैं अपने ध्यान को उस ज्योति स्वरूप पर केंद्रित करती हूं और वो ज्योति स्वरूप से प्रकाश की किरणें फैल रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। तो ये जो गुणधर्म है उसको कहा आत्मचिंतन करो, जो उसका स्वरूप है उसको कहा आत्म दर्शन करो। तो आत्मदर्शन आत्मचिंतन करते करते आप महसूस करेंगे कि वो प्रेम, वो शांति, वो शक्ति का झरना मेरे भीतर से बाहर अफ्लो होना आरंभ हो गया है। हमने उसको फ्लो होने की मार्जिन ही नहीं दी है, कोहरा खड़ा कर दिया है, नफरत का, भय का, चिंता का। थोड़े समय के लिए उन सब से ध्यान हटा, तभी कहा जूता चप्पल बाहर उतारो। ये देह से संबंधित जो भी बातें, ये जो मोटी मोटी लेयर चढ़ी ना, ये गुस्सा, ये किस कारण से चढ़ी? अपने आप को देह समझने से हमने गुस्सा किया, नफरत की। आत्मा समझने से आप कभी गुस्सा कर ही नहीं सकते, उसका वो गुणधर्म ही नहीं है। जैसे कहा ना, पानी को गर्मी के ऊपर रखा तो उसने गर्मी सोखा। हमने अपने आप को देह समझा और उस गलत मान्यता के कारण हमारे जीवन में ये सब आ गया। अब वो मान्यता को ही मैंने सही कर दिया, मैंने ये बोल दिया कि ये मैंने, ये मेरे उपकरण है, मैं तो आत्मा हूं। तो अब वहां ध्यान केंद्रित करूंगी, वहां का चिंतन चलाऊंगी, मेरे जीवन से वो फ्लो होना आरंभ होगा। तो इसीलिए पिक्चर में दिखाया, नहीं दिखाया इन्होंने। तो आत्मा जो है, जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे गाड़ी और ड्राइवर होता है। गाड़ी क्या होती है? जड़ होती है। और ड्राइवर कैसा होता है? चैतन्य होता है। एक मनुष्य बैठा है ना ड्राइवर के नाम पे, चैतन्य कहेंगे ना उसको। तो चैतन्य ही उस जड़ को क्या कर रहा है? खींच रहा है, ड्राइव कर रहा है। और कहां बैठेगा वो? जहां कंट्रोल पैनल है, ड्राइवर वहीं बैठेगा ना, क्योंकि कंट्रोल करनी है उसने गाड़ी। पूरी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है पूरी गाड़ी में बैठना है उसको? नहीं, जहां कंट्रोल पैनल है वहां बैठना है। तो किसको? इस आत्मा को, इस शरीर में बैठकर किसको कंट्रोल करना है? शरीर को। और शरीर को कंट्रोल करना माना शरीर की इंद्रियों को। मैक्सिमम इंद्रियां तो यही है, आंख, नाक, कान, सब कुछ तो इधर ही है। इसलिए आत्मा का ये स्थान है और रिलेशन जैसे ड्राइवर और गाड़ी का रिलेशन है कि मैं ड्राइवर हूं, मैं मालिक हूं इस गाड़ी की, शरीर रूपी रथ की, और मालिक बनकर इसको ड्राइव करूं। तो जब मालिक बनकर मैं इसको ड्राइव करूंगी तो ये जो हम कहते हैं ना, क्या करूं, बोलना तो नहीं था पर बोल दिया, सुनना तो नहीं था पर सुन लिया, खाना तो नहीं था पर खा लिया, मींस आउट ऑफ कंट्रोल ना, यही हुआ ना कि मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा है मेरी आंख पर, मेरा कंट्रोल नहीं है जीभ पर, मेरा कंट्रोल नहीं है मेरे हाथ पर, मेरा कंट्रोल नहीं है कान पर। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उस मालिक पने के स्थिति में अपने आप को रखा, किधर है मैंने, मैं मालिक हूं आत्मा इसकी, उस स्मृति में मैं जी कहां रही हूं। तो आत्मदर्शन इसीलिए करना होता है कि वो मालिकपना मैं अपने हाथ में ले लूं वापस। हमने मालिकपने को छोड़ दिया और इसीलिए गाड़ी अगर अपने आप चलने लगी तो क्या कराएगी? वो एक्सीडेंट कराएगी। और आए दिन हमारे जीवन में, संबंधों में, व्यवहार में यही तो हो रहा है, एक्सीडेंट ही हो रहे ना। तो इसको कहा सेल्फ एम्पावरमेंट, अपनी पकड़, अपनी मालिकी अपने हाथ में लो, यही सेल्फ एम्पावरमेंट है। सेल्फ का दर्शन करो रोज, उसका चिंतन करो, वो जो ऊर्जा अपने आप में गुण शक्ति प्रेम से भरी पड़ी है उसको अपने से बाहर फ्लो होने दो, रेडिएट होने दो। हम उसके बदले उसका उल्टा फ्लो होने दे रहे हैं। यहां से क्या झलक रहा है, तो का गुस्सा झलक रहा है, तो भय झलक रहा है, तो टेंशन झलक रहा है, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं अपने आप से बेखबर हूं। इसीलिए कहते उम्र भर रूह और जिस्म साथ साथ रहे लेकिन दोनों एक दूसरे से बेखबर रहे। तो हो गया बेखबरी का जीवन, बहुत हो गया, अभी बेहोशी का जीवन बहुत हो गया, अब होश में जीना आरंभ करें। ये होश में जीना, होश संभालना, इसको ही कहते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट। मैं अपने होश में रहूं, मैं हूं कौन, मैं अपने आप में शक्तियों से भरपूर हूं। तो पांच बातें होती है परिचय की, तो परिचय में पांच बातें, नाम, रूप, एड्रेस, क्वालिफिकेशन और प्रोफेशन, ऐसे होती है परिचय में। तो सेल्फ का परिचय आज हमने दिया आपको कि सेल्फ स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। तो एक एनर्जी है लाइट फॉर्म, तो फॉर्म माना रूप बता रहे हैं हम आपको, क्या रूप है उसका, ज्योति स्वरूप। उस एनर्जी का नाम क्या है, आत्मा कहो, रूह कहो, साइकी कहो, चाहे जो भी नाम दे दो। तो नाम हो गया, रूप हो गया, एड्रेस शरीर के अंदर, यहां जहां तिलक करते दोनों भ्रुकुटियों के, ये भौओं के बीच में जो स्थान जिसको भ्रुकुटी कहते हैं, वहां पर उसकी एड्रेस है। और परमानेंट एड्रेस कहाँ है इसकी, क्योंकि दो एड्रेस दाई जाती है हमेशा, एक प्रेजेंट और दूसरी परमानेंट। प्रेजेंट एड्रेस ये है और परमानेंट क्या बोलते हैं, कहाँ से आए हैं हम लोग, भगवान के घर से आए हैं और भगवान के घर जाना है। कहाँ है वो भगवान का घर, ऊपर बताते, ऊपर देखते तो नीला आसमान दिखता है और तो कुछ दिखता ही नहीं है, परम धाम। नीले आसमान के ऊपर भी एक आसमान है भगवान ने कहा, और वो आसमान है गोल्डन रेड लाइट का, जहां सिर्फ और सिर्फ आत्माएं रहती है, जहां सिर्फ और सिर्फ शांति है, वो हमारा घर है, वहां से हम उतरे हैं। वो हमें, वो हमारी स्मृतियों से निकल गया, पूरा नहीं निकला, अधूरा निकला, और इसलिए ऊपर कहां वो नहीं बता पा रहे, पर ऊपर है ये जरूर बोल रहे हैं, वो भी मान्यता नहीं टूट रही है हमारी, क्योंकि पता है हम ऊपर से ही आए हैं पर पूरा याद नहीं है। तो भगवान आके वो हमारी धुंधली यादों को फिर से स्पष्ट कर देता है, और उस धाम को जहां से हम आए हैं, जिस नीले आसमान के ऊपर जो दूसरा आसमान है, वो वाली जो दुनिया है उसको कहते हैं परम धाम, उसको कहते हैं शांति धाम, उसको कहते हैं ब्रह्म लोक, उसको कहते हैं मुक्ति लोक। वहां से हम आत्मा इस धरती पर आती है, तो धरती पर जब आती है, एक एक्टर भी रंगमंच पर जाने से पहले एक्टिंग के टैलेंट लेकर आता है ना अपने साथ, तो आत्माएं ऊपर से आती है, मां के गर्भ में जाती है, शरीर रूपी वस्त्र पहनकर बाहर आती है दुनिया के रंगमंच पर, और एक्टिंग आरंभ करती है, कर्म करना आरंभ करती है। वो कर्म कैसे करे, वो एक्टिंग कैसे करे, वो एक्टिंग की टैलेंट जो लेकर आई वही है उसकी क्वालिफिकेशन, प्रेम, शांति, शक्ति, शुद्धि, आनंद, ज्ञान, ये सब उसके गुण ओरिजिनल, इसको लेकर आत्मा आई एक्टिंग करने के लिए। तो एक्टिंग उसका प्रोफेशन। तो एक्टर का प्रोफेशन क्या होता है? मुझे कौन सा पार्ट मिला? पार्ट एक बार मिल चुका, अब पूरा फोकस कहां रखना है? जो पार्ट मिला है उसको ऐसे अदा करूं को देखने वाला कहे क्या पार्ट प्ले किया है। तो हम भी पार्ट मिल चुके हैं, हम किसी की माँ है, किसी के बाप है, जैसे आप सुरक्षा दल में हैं, तो उसके अनुसार कोई आपकी पोजीशन है, ये सब आपको पार्ट मिले हुए हैं। लेकिन ये पार्ट कैसे प्ले करना है आप आत्मा एक्टर को? आत्मा के जो खुद के गुण है, गुणधर्म है, उस पार्ट प्ले करते समय वो बाहर में झलके, तब वो एक्टिंग क्या कही जाएगी? वो वाहवाह के लायक वो एक्टिंग होगी। और न सिर्फ वाहवाह के लायक एक्टिंग होगी, लेकिन वो एक्टिंग करते करते ही मैं अपने आप को गुण और खुशियों से भरपूर महसूस कर रहा हूं। अलग से मुझे गुण और खुशियों को और प्रेम को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी एक्टिंग से ही, क्योंकि मैं खुद ही प्रेम और शांति और शक्ति का पुंज हूं, तो मेरे से वो बह रही है और मैं उस अवस्था में हूं, तो मैं दूसरों को भी वो खुशी और प्रेम बांटता हूं, और ऐसे करके मैं सर्व के जीवन को सुखमय बनाता हूं, सर्व को सेल्फ एम्पावरमेंट की प्रेरणा देता हूं। तो ये है सेल्फ एम्पावरमेंट। और आज जैसे कहा कि हमारे इस विश्वविद्यालय का मम्मा डे है, और मम्मा डे का मतलब इस संस्था की जो प्रथम मुख्य प्रशासिका रही मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, उनकी आज पुण्य तिथि है, और उनके निमित्त आज सबको प्रसाद मिलेगा जिसको हम तोली कहते हैं। प्रसाद माना वैसे भी क्या होता है, अर्थ दुनिया के अंदर भी जो भोजन घर में पक रहा है वही मंदिर में जाके किसी ने पकाया, मंदिर में भी या गुरुद्वारों में भी जहां कर भी, लेकिन वो भगवान के सामने रखा गया, भगवान को अर्पित किया गया, तो भगवान की एनर्जी उसमें प्रविष्ट कर गई, और उसके बाद वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। तो यहां पर भी प्रसाद, या दूसरा हम शब्द देते हैं टोली, कि जब वो प्रसाद को बनाया जाता है या लाया जाता है, उस समय हम अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट की पोजीशन में होते हैं, अपनी सेल्फ की स्मृति में, जिसको कहते हैं आत्म स्मृति के साथ जीना, तो आत्म स्मृति में रहना और उसी आत्म स्मृति में रहकर परमात्मा को ऑफर करना और उसमें परमात्मा की एनर्जी भर देना, और उसके बाद उसी आत्म स्मृति और परमात्मा की स्मृति से उसको स्वीकार करना, उसको कहते हैं प्रसाद, उसको कहते हैं टोली। तो जिस मम्मा के निमित्त आज ही आप सबको मिलने वाला है, उस मम्मा की थोड़ी बहुत विशेषताएं हम आपके सामने रखेंगे, कि जब मम्मा को भी इस विश्वविद्यालय में आने का अवसर मिला और परमात्मा से इस सेल्फ एम्पावरमेंट की बातें सुनने को मिली, तो उन्होंने अपने इस लेसन को इतना पक्का किया, इतना पक्का किया कि हर कर्म करते समय उसने आत्म स्मृति को बनाए रखा। हर कर्म करना है कौन सी स्मृति में रहकर? आत्मा की स्मृति में रहकर। आत्मदर्शन, आत्मचिंतन के लिए अलग से मम्मा बहुत मौन में रहती थी, बहुत प्रातःकाल उठ करके अकेले में मौन में आत्मदर्शन करना, आत्मचिंतन करना, और उसके माध्यम से आत्मा के भीतर के गुणों को बाहर फ्लो होने देना, रेडिएट होने देना, और उसकी नेक्स्ट स्टेप परमात्मा से कनेक्ट होना, जो आपको दूसरा लेसन कराया जाएगा, और परमात्मा से कनेक्ट होकर फिर उसकी ऊर्जा को अपने भीतर भरना, तब सही में हमारा राजयोग सदता है। तो ये पहली स्टेप थी कि सेल्फ को समझना, और समझ के आधार से उसका आत्मदर्शन, आत्मचिंतन करके अपने आप को एम्पावर करना, लेकिन वो एम्पावरमेंट मेरा सदा कायम रह सके उसके लिए जरूरी है कि उस परमात्मा से भी कनेक्ट होना और उसकी ऊर्जा को भीतर में भरना। तो उसकी अगले स्टेप मम्मा ने वो अभ्यास सुबह सुबह उठकर बहुत गहराई से करती थी, और इसलिए जब वे कर्म में आती थी तो उनका वो उसके चेहरे से वो रूहानियत, रूहानी वाइब्रेशंस सबको अनुभव होते थे। वो मम्मा जब आई थी वो भी एक छोटी सी कुमारी ही थी, लेकिन क्योंकि यज्ञ जब स्थापना हुई तो 350-400 जितने भाई बहने इकट्ठे हुए थे, और जिसमें काफ़ी सारी यंग बहनें भी थी, छोटी छोटी उम्र की, और अपने घर से छूटकर यज्ञ में समर्पित हुए थे। छोटे बच्चों को बड़ा होने के समय माँ की पालना का जरूरत महसूस होता है, तो वो मम्मा हालांकि उन्हीं में से एक कन्या थी, लेकिन उसमें वो मातृत्व की उपासना थी। उनके पास जो भी आता था लगता था जैसे माँ जैसा प्यार दे रही है। उनके भीतर जो उन्होंने इस अभ्यास को पक्का किया, सबको लगता था कि मम्मा सबको उस परमात्मा के प्यार से भरपूर कर रही है। तो परमात्मा के प्यार से सबको भरपूर करती रही, जिस कारण से वो छोटी कन्या सबके बीच में मम्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो हम कहते इस यज्ञ में यज्ञ पिता के रूप में हमारे पास पिता श्री ब्रह्मा बाबा है, और यज्ञ माता के रूप में हमारे पास मातेश्वरी जगदम्बा है। पिता श्री तो बहुत बुजुर्ग है और ये यज्ञ माता तो यंग, तो कोई वो रिलेशन नहीं है, लेकिन कौन सा रिलेशन है, क्वालिटी वाला, कि क्वालिटीज उसमें माँ की होने के कारण उसको यज्ञ माता का दर्जा दिया गया, और उस यज्ञ माता ने इस यज्ञ को इतना फैलाया पूरे विश्व भर तक चला गया, और आज आप उस विश्वविद्यालय में आकर पहुंचे हैं जहाँ स्वयं की पहचान प्राप्त करके आप भी अपने जीवन को एक सुंदर रूप दे सकते हैं। भाग्य उदय हो गया है आपका, यहाँ पहुँचना माना भाग्य का उदय होना, लेकिन एक बार भाग्य उदित हो जाए उसको उदित रखना ये अभी आपके हाथ में है। हम हमेशा भगवान से कहते आए हैं, हे भगवान, सभी कहते हैं तुम करुणा के सागर हो, तुम दया के सिंधु हो, हम पर भी तो दया बरसाओ, करुणा बरसाओ। तो ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है जो आपको यहाँ निमंत्रण दिया, और अब आप आगे आपके ऊपर उसकी करुणा बरस गई है। तो जो प्रतीक्षा थी लंबे समय से कब आपकी दया हम पर बरसेगी, वो प्रतीक्षा पूरी हो गई है। लेकिन अब प्रतीक्षा के बाद प्रतीक्षा कि जो अब आप हमें मार्गदर्शन देंगे उस मार्गदर्शन के अनुसार हम अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाएंगे, तब सचमुच में हमारा जीवन सदा सदा के लिए ब्लिसफुल बना रहेगा। तो मम्मा ने इस यज्ञ को इतना बढ़ाया, अपने जीवन प्रैक्टिकल जीवन से भगवान की शिक्षाओं को इतना धारण किया कि लगता था प्रैक्टिकल जो किताबों में पुस्तकों में हम पढ़ते हैं वो उनके जीवन से पढ़ने में आ रहा है। हर बात को भगवान ने जो सिखाया हर बात को जीवन में ट्रांसलेट कर दिया कि उनके जीवन को देखते ही समझ में आता था कि भगवान क्या सिखा रहे हैं। उनके जीवन में एक्यूरेसी, उनके जीवन में पंक्चुअलिटी, उनके जीवन में मातृत्व वाला प्यार सबके प्रति, चेहरे पे वो शांति, वो शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं कि जिसकी उपस्थिति में, जिसके सानिध्य में रहकर हर एक अपने आप को महसूस करता था कि जैसे हमें आगे बढ़ने के लिए कोई क्या कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो ऐसे ऊर्जावान मम्मा ने जो सबको अपनी परमात्मा से ऊर्जा खींची और सबको ऊर्जा दी और सभी इस संस्था को इतना विशाल बनाया, आज उनकी पुण्यतिथि पर आप सभी को भी वो प्रसाद दिया जाएगा। 5 मिनट के लिए हम वो जो हमने आत्मा को समझा है जस्ट अभ्यास कर ले। तो चलिए सभी सीधे बैठ जाएंगे, हाथ में अगर कुछ रखा है उनको साइड रख देंगे और सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर जहां हम तिलक करते हैं मस्तक के बीचों बीच, वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करें। भीतर में जहां तिलक करते हैं उसके भीतर में देखें चैतन्य शक्ति आत्मा को ज्योति स्वरूप में, भीतर में एक प्रकाश का पुंज उसे अनुभव के नेत्र से, समझ के नेत्र से देखें। प्रकाश की किरणें चहुं ओर फैल रही है, ये कितना सुंदर मुझ आत्मा का प्रकाशमान स्वरूप है। कितने वर्षों से तो क्या कहें, कितने जन्मों से मैं इस आत्मदर्शन के प्रति बेखबर रही, बेहोश रही, और इसलिए सारा ही ध्यान सिर्फ और सिर्फ शरीर पर केंद्रित रह गया, और जिसके कारण से ही आत्मा के जो गुणधर्म है वो जैसे कि इस देह भान में रहने के कारण जो गुस्सा नफरत अशांति डेवलप हुआ उसके बादलों में वो ढक गया। अब मुझे नित्य आत्मदर्शन करना है, ये ऊर्जा है। ऊर्जा पर जब ध्यान देते हैं वो ऊर्जा फ्लो होना आरंभ करती है। इस ऊर्जा का गुणधर्म है शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति, शुद्धि, ज्ञान। इसलिए मैं इन गुणधर्मों का चिंतन करूं हर दिन। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं स्वयं शांति और प्रेम का अनुभव करती हूँ, और इसके साथ साथ मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा से से इस शांति और प्रेम के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं और चारों ओर के वातावरण को भी प्रेम में शांति में बनाते हैं। मैं आत्मा इस भृकुटी में बैठकर शरीर के उपकरण जो है आंख नाक कान जो स्थूल रूप में है और भीतर में भी उपकरण है मन बुद्धि संस्कार, इन सब का इस्तेमाल करके ये जीवन जी रही हूँ। लेकिन इन सब का इस्तेमाल करने वाली मैं आत्मा इनसे अलग हूँ, ये होश ये स्मृति अब मुझे कायम रखना है। मैं शरीर के भीतर अवश्य हूँ लेकिन शरीर से अलग हूँ, इसको चलाने वाली शक्ति हूँ, इससे मैं भिन्न हूँ। और चूंकि मेरे गुणधर्म सुख शांति प्रेम खुशी आनंद है, तो जब मैं इस शरीर को चलाऊं इसे कर्म करूं, मैं अपने इन गुणों को उन कर्मों में उन गुणों के वाइब्रेशन को बहने दूं। ये अटेंशन अब मुझे रखना है। इतना ही नहीं, हर अगला व्यक्ति जिससे मैं मिलूं उसको भी मैं आत्मा रूप में देखूं, कि वो भी शरीर के भीतर एक आत्मा है, उसके भी वही गुणधर्म है। इस प्रकार से हम जीवन में व्यवहार में संबंधों में इस प्यार और शांति की ऊर्जा को जब बहने देंगे तो हर रिश्ता हर व्यवहार अच्छा होगा और जीवन ब्लिसफुल बन जाएगी। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। हम एक बार कत्तल ध्वनि से दीदी का धन्यवाद देंगे। अभी हम सभी यहां से जैसे कल हमने प्रसाद लिया था, आज भी हम लेंगे मम्मा के दिवस पे, तो दो रो बनेंगे, एक राइट एक यहां से, और आप लोग बड़े प्यार से जैसे कल आप खड़े थे वैसे ही अपने दो लाइनों में आ जाएंगे, पहले फ्रंट रो वाले फिर उसके बाद पीछे ऐसे करते हुए आ जाएंगे। इसके बाद आप सभी लोग नाश्ते पे जाएंगे, नाश्ते के बाद आप सब अपना फ्रेश होके तैयार होके ड्रेस चेंज करके अपने इसी सिविल यूनिफॉर्म में